حمدا سيدنا الرسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبح ٹی وی پر افسوسناک خبر دیکھی کہ پیٹرول سے بھرے ہوئے ٹینکر کے گر جانے سے آگ لگی اور اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی ہلاکتوں کی جان بحق ہو گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے ایک زمانے میں یہاں انسانی فطرت اور جبلت کی بات ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم لوگ جبلت سے زیادہ تر کنٹرول ہوتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہو جاتی جبلت اگر ہم اپنی ٹریننگ کریں تو اس جبلت پر ہم قابو پا سکتے ہیں تو ایک ایگزامپل میں نے یہ کوٹ کی تھی کہ ہم یہاں سبھی لوگ بیٹھے ہیں اگر کہیں دھماکہ ہو جائے گولی چلنے کی آواز آئے تو میرا اور آپ کا سب کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ہم فوراً اٹھ کے باہر دیکھیں گے کہ کیا ہوا تو اس کی وجہ سے پھر عام طور پر ہمیں نقصان ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہماری جگہ فوجی ہوگا ہے تو وہ بھی انسان لیکن وہ دھماکے کی یا گولی کی آواز سنتے زمین پہ لیٹ جائے گا فوراً تو پانچ منٹ کے بعد زمین سے اٹھ کے پھر دیکھے گا کہ کیا ہوا یہ اس کی ٹریننگ ہے جس نے اس کی اس جبلت کو ٹیم کر لیا ہے کہ وہ جبلت کا تابع نہیں رہا بلکہ اپنی عقل کا تابع ہو گیا تو جائے حادثہ پر ہمارا پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ بھاگے ہوئے چلے جائیں اور جا کے جائے حادثہ کو قریب سے دیکھیں اس کی وجہ سے بہت سا نقصان جو بچ سکتا ہے وہ بچ نہیں پاتا تو اگر کہیں ہم اپنے رویوں میں یہ تبدیلی لے آئیں کہ جائے حادثہ پر جانا جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے ان کو جانے دیں وہاں جھمگٹا نہ لگائیں صرف یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر ان ایجنسیز کو ہم انفارم کر دیں کہ فلاں جگہ پر یہ حادثہ ہوا ہے تو ان کو سارا ریسکیو ورک اور دوسری دیگر احتیاطی تدابیر کرنے دیں تو اس سے ہوگا یہ کہ ان کے کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی جو متاثرین ہیں اس حادثے کے ان کو فوری طور پر امداد مل سکے گی امدادی کاموں میں تیزی آئے گی ہم لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں امدادی کاموں میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے اسی طرح آج کل ٹی وی پر ایک اشتہار چل رہا ہے اور میں اس قصے میں تھا کہ مجھے اس کمپنی کا اگر ٹیلی فون نمبر مل جائے یہ بنیادی طور پر برٹش کمپنی ہے جیز کے نام سے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لینکاسٹر میں اس کا ہیڈ آفس ہے وہ آج کل اشتہار ایک چلا رہے ہیں ٹی وی پر جسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ ہمیں بحثیت قوم کے کس قدر نچلی سطح پر پروجیکشن دے رہے ہیں وہ اشتہار ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے تین کھلاڑی وہ دکھا رہے ہیں پیویلین میں بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں اور کمنٹیٹر بتا رہا ہے کہ ایک زوردار ہٹ لگائی سکس छह रन्स, साथ ही कहता कि नहीं सॉरी वो कैच पकड़ लिया गया। तो उनका एक और उसके बाद के पाकिस्तान मैच जीत गया। तो इंडियन क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी रोता हुआ दिखाया, उसके साथ ही उसे इशारा करते हैं कि चले जाओ दूसरी जगह। तो वहाँ दरवाजे पे नॉक होती है और पाकिस्तानी टी शर्ट जिस पे लिखा पाकिस्तान पहने खड़े हैं लोग, और उसे वो कहते हैं कि नो इशू टेक टिश्यू, और उसके आंसू पोंछते हैं मजाक के तौर पे। अब ये इतना बहसियत कौम के हमें इतने लोअर दर्जे पर दिखाया है कि हम वो कौम हैं जो किसी को अगर खेल में शिकस्त दे दें तो उसको फिर उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वी एड इंसल्ट टू इंजरी, जबकि हम जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, वो लोग जिन्होंने आपको 12 साल इंतहाई शिद्दत के साथ सताया था, जब फतह मक्का दाखिल हुए मक्का मुकरमा में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजजी के मारे सर झुका रहे थे और सर झुकते झुकते यहां तक झुक गया कि आपकी रेश मुबारक ऊंटनी की बैक को टच करने लग गई थी। हम तो ऐसी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारी प्रोजेक्शन तो एड में इस तरह से होनी चाहिए थी कि खुद हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन इंडियन टीम से कहते कि देखिए आप दिल मेला नहीं करें, आज पाकिस्तान जीता है, इससे पहले कई बार आप हमसे जीते हैं, खेल है, कल फिर आप जीत जाएंगे। खेल में हार जीत होती रहती है, ना जीतना कोई बहुत बड़ी बात है ना हारना। इस तरह उनको दिलासा दे दिया जाना चाहिए था, हमारे जर्फ का तकाजा यह था। तो एड ऐसा आता कि हमारे टीम के कैप्टन इंडियन टीम को दिलासा देता हुआ दिखाई देता, पता चलता कि मुसलमान बड़े जर्फ का मालिक होता है। वो मैंने कोशिश की कि उस कंपनी का अगर टेलीफोन नंबर चीफ एग्जीक्यूटिव का मिल जाए तो मैं यूके ही में उससे बात करूं कि आप गलत प्रोजेक्शन क्यों दे रहे हैं इस कौम की, आप हमें इतना कमजर्फ बना के पेश कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं। अगर आप लोगों से मुमकिन हो सके तो ये व्यू पॉइंट जरूर वहां दीजिए कि मुसलमान कमजर्फ कौम नहीं है, बहुत आला जर्फ है, और हम लोग सिर्फ उस वक्त सख्त होते हैं सुन्नत के तौर पे भी जब हम मैदान जंग में हैं और दुश्मन हमारे साथ लड़ रहा है, और वही लड़ता हुआ दुश्मन जब हमारे सामने हथियार डाल दे, हाथ खड़े कर दे, तो उसको हर तरह की पनाह होती है, बल्कि हम अपनी जान दे देते हैं उसकी हिफाजत के लिए। फौज में एक आम तरीका है अफसरों का कि लड़ाई के दौरान POW दोनों साइड के लिए जाते हैं, होते हैं तो रूटीन है और पार्ट ऑफ द गेम है। तो लड़ाई पूरे जोरों पर होती है, कोई अफसर POW बन के आ गया तो उसको कोई इंसल्ट नहीं करता है, बल्कि उसको जो सीनियर मोस्ट वहां कमांडर उस वक्त मौजूद है उसके सामने बड़ी इज्जत के साथ पेश किया जाता है, और वो अफसर भी उसको बड़ी इज्जत के साथ रिसीव करता है, उसको आराम से बिठाता है और पहला सवाल उससे ही पूछा जाता है कि आपने खाना खाया है, चाय पियेंगे, उसको जो फील्ड मेस है उससे मंगवा के बाकायदा उसको कॉफी पिला के फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसको पीछे रवाना कर दिया जाता है। अगर आप में कुछ फौजी बैठे हैं, अगर सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो वे इस चीज़ को कंफर्म कर देंगे कि दौरान लड़ाई भी हम जंगी कैदी को एहतराम देते हैं पूरा। ये नामालूम किस प्लान के तहत वो एड बनाया गया और उसे मुसलसल चलाया जा रहा है बड़ा फ्रीक्वेंटली, उससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है हमारे बारे में बहसीत कौम के। ये कुछ सवालात थे जो मैं छोड़ गया था कि मैं नेक्स्ट संडे बात नहीं। उसमें एक आयत थी अल्लाह नूर समावात बोला, उसके बारे में मैंने कहा था कि मैं एक साहब का सवाल था उसमें, ये तो इसका तो जवाब दे दिया था कि एक आयत का मफहूम है कि इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब वो कोई ख़ास काबिल ज़िक्र शय न था, तो ये मैंने अर्ज़ कर दिया था। इनका अगला सवाल है कि सोशल मीडिया पर हाथ पर मुसर कुछ हजरात अक्सर शुआर इस्लामी का मजाक उड़ाती हैं और उनका दायरा असर मुसलमानों तक भी फैलता जा रहा है और एक तबका ऐसा बन रहा है जो इन अहकामात वाकयात को तो तस्लीम करते हैं जिनकी कोई अकली और साइंसी तौजी या सही रवायात मौजूद हैं, जबकि बाकी अहकामात के लिए कहते हैं कि ये सिर्फ एक मखसूस दौर के लिए था। सवाल ये है कि उनके दलाइल का रद्द कैसे किया जाए। आप अगर इसे वाज़ेह कर देते कि या एक आध कोई मिसाल कोट कर देते कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं तो जवाब देने में न सिर्फ सहूलत होती बल्कि वो सेहत के लिहाज से ज्यादा सही होता जवाब। आपके जनरल सवाल है, जनरल जवाब इसका मैं अर्ज कर देता हूं। इस्लाम के लिए कोई नई बात नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स तनकीद करते हैं। राइट फ्रॉम डे वन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है। आपको अच्छी तरह से याद है कि कुफार ने कुरान पाक को शेरों का मजमुआ कहा, कुफार ने कुरान पाक को के बारे में ये कहा कि मौत अल्लाह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी लिखी हुई किताब है। ये इस्लाम को तो इसका सामना डे वन से है, उसके बावजूद ये है कि हिजरत के वक्त मुसलमान मर्दों की तादाद 110 थी, और उसके बाद देखिए किस तेजी से इस्लाम फैल गया। और फिर जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किस तरह से इस्लाम फैला, फैलता ही चला गया। आज भी जबकि आपने ये कहा कि लोग इसका इस तरह से इसके बारे में बात करते हैं, सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब दुनिया का इस्लाम है। खुद मगरिब में बड़ी तेजी से यह फैल रहा है। सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता और ना सच्चाई को इस बात की जरूरत होती है कि उसको डिफेंड किया जाए। अगर हम में से एक शख्स बहुत ईमानदार है, दयानदार है, सैकड़ों की तादाद में लोग मिलके उस पर एतराजात उठाते हैं, वो आदमी डिफेंड नहीं करता, तो भी आप देखिए कुछ अरसे के बाद लोग कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो तो ईमानदार आदमी है। सच्चाई अपने आप को खुद एस्टेब्लिश कर लेती है। तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सच्चा दीन है। कुरान कलामे इलाही है, इल्हामी किताब है। ये अपनी सच्चाई खुद मनवा लेती हैं। फर्क सिर्फ जो है वो ये है कि अगर हम जो इस्लाम के पैरोकार हैं हम ये कोशिश करें कि हमारा किरदार इस किस्म का हो जो लोगों के लिए लायक तकलीद हो। मैंने शायद यही किसी महफिल में एक अर्ज की थी कि यूके में 70s अर्ली 70s में भी पुलिस स्नैप सर्च किया करती थी और उनकी रूल्स और किताबों में तो 5% लिखा है लेकिन वो आमतौर पर शायद 0.5% भी नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं। तो उस जमाने में अर्ली 70s की बात है, अगर आप चले जा रहे हैं फुटपाथ पर और आप स्नैप सर्च की जद में आ गए, पुलिस वालों ने आपको रोका और आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी सर्च करना चाहता हूं, तो सर्च का स्टार्ट उनका उसी से होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपने ड्रिंक कितना किया हुआ है। तो वो जेब से आला निकाल कर आपके आगे करता था। तो अगर आप कह दें कि वेल ऑफिसर आई एम मुस्लिम आई डोंट ड्रिंक, वो फौरन आप दो कदम पीछे हो जाएगा, वो आई एम सॉरी सर, जाइए। वो सर्च ही नहीं करता, इसलिए कि उसको मालूम था कि मुसलमान ड्रिंक नहीं करता। और कहीं गालिबन, मैं गालिबन कह रहा हूं, एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये बात थी कि मुसलमान शायद झूठ नहीं बोलता। तो फौरन माजरत करेगा और आपसे कहेगा आप जाइए। लेकिन हमने जिस किरदार का मुजाहरा किया है, जो तौर तरीके हैं हमारे, अभी अगर कभी स्नैप सर्च में आ जाए बंदा और वो दे आला के ये लोग और हम ये कह दें कि ऑफिसर हम है मुस्लिम आई डोंट ड्रिंक, कहता उधर खड़े हो जाओ, तुम्हारी तो डिटेल सर्च करूंगा मैं। तो अगर कहीं जुबानी बातचीत बातें करने की बजाय, जुबानी बातें बनाने की बजाय हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि हर आदमी मजबूर हो जाए इस बात पे कि ये मुसलमान है ना, ये झूठ बोलेगा ना चोरी करेगा ना बेईमानी करेगा, तो उससे इस्लाम के फैलने की रफ्तार शायद बहुत कई गुना बढ़ जाए। एक बार एक खातून की बहुत ही ढांड डपट की मेरे नाम एक ईमेल आई बहुत सख्त जुबान में। मैं उसको सख्त जुबान अपने लिए कह रहा हूं, हो सकता है कि पोलाइट हो, लेकिन मुझे वो लगा कि उसने मेरे सर में एक अदर ईंट दे मारी है। तो उसने लिखा था कि वो मैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री था कोई जिसकी वो शहरी थी, तो लंदन में थी, कि मैं दुआ के लिए तुम्हारे पास आती थी तो मुझे यूं लगा कि इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, तो अगर तुम्हें याद आ जाए तो तुम्हारे हाथ पे ही मैं मुसलमान हुई थी। तो वहीं दुआ पर एक और साहब आते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरी शादी हो गई। तो ये ईमेल इसलिए लिख रही हूं कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूं कि कि तुमसे मिलके मैं मुसलमान हुई थी और तुम्हारे दूसरे मुसलमान भाई से शादी करके मैं दोबारा क्रिश्चियन हो गई हूं। मसला इस्लाम के साथ बिल्कुल नहीं है कोई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा इफेक्टिव है, जो कोई उसको गहराई से देखता है, सुनता है, पढ़ता है वो मुसलमान हो जाता है। मसला वहां आता है जब वो मेरे साथ डील करता है। है तो अफसोसनाक बात, शायद आपको पसंद भी नहीं आई ये बात कहना, लेकिन हकीकत यही है। तो बजाय हम बातें बनाने के और इस्लाम के बारे में लंबे चौड़े दावे करने के बारे में, अगर कहीं हमारा किरदार जिस हद तक मुमकिन हो, क्योंकि पूरी तरह तो मुमकिन नहीं कि वो इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है कि कोई इंसान उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले, वो है सुन्नत, जिस हद तक ह्यूमनली पॉसिबल है। अगर उतना ही हो जाए तो लोग बड़ी तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनका सवाल ये है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कौन हैं और किस मकाम पर फाइज हैं। कुरान पाक में है कि हजरत मूसा ने जनाब हजरत खिजर से इल्म सीखने की दरख्वास्त की थी। वो इल्म क्या था? जनाब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में एक इख्तलाफ चला आ रहा है। कुछ लोगों के नज़दीक ये फरिश्ते हैं, एक फरिश्ते का नाम है, और कुछ लोगों के नज़दीक ये पैगंबर है, लेकिन ज़्यादा करीन क्यास बात यह है कि ये फरिश्ते हैं। और फरिश्ते का कोई एक ही मकाम है कि वो फरिश्ता है, उसमें वलायत की तरह, तसव्वुफ की तरह दर्जात नहीं है। फरिश्ते बजाते खुद कोई कदम नहीं उठाते, वो सिर्फ अमरे रब्बी के पाबंद हैं। जितना उन्हें बता दिया जाता है उसके मुताबिक वो करते हैं, उतना ही इल्म रखते हैं। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या जो आपने इसमें कोट किया है, इसको रेफर किया आपने, वो किस्सा ये है कि जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम देना मकसद था, तो रब तआला ने उस तरह तालीम दी। क्योंकि अगर कुरान पाक को हम गौर से देखें तो रब ताला ने इसमें हमें तालीम देने के कई एक मेथड बयक वक्त कई मेथड यूज किए हैं। उसने रब ने हमें तरगीब देने के लिए इनामात का जिक्र किया है, हमें बुराई की तरफ जाने से रोकने के लिए या बुराई से हटाने के लिए सजा का खौफ दिलाया है। उसने हमारी इबरत के लिए गुजरी हुई कौमों के किस्से बयान किए हैं कि हम उनको पढ़ के इबरत पकड़ लें। उसने प्यार और मोहब्बत से काम लिया है, उसने डांटा है बहुत सी जगहों पर। तो कई मेथड एक वक्त में इस्तेमाल हुए, तो इसी तरह जो पैगंबर हैं उनको भी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जादू का किस्सा पेश आया, हम जब किसी से ये अर्ज करते हैं कि हजूर ये जादू वादू कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो कहते हैं कि कमाल करते हैं आप, पहले आदमी मिले हैं, अब तक हम दर्जनों दूसरे हजार से मिल चुके, जिसके पास जाओ वो कहता है तुम पर जादू हुआ और आप वाहिद आदमी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जादू नहीं हुआ, ये आपका मेडिकल प्रॉब्लम है। तो वो फिर कहता है जी कि जादू तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो गया था। बिल्कुल गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कतई तौर पर जादू नहीं हुआ था, वो उम्मत के लिए एक तालीम थी कि जादू का वजूद है और बसा औकात इंसान जादू की जद में आ जाता है, और अगर कभी कोई जादू के जद में आ जाए, उस पर जादू हो जाए, तो उसका आसान सा तोड़ ये है कि मेरे कलाम से इन सूरतों को पढ़ के दम कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। वो एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन था उम्मत की तालीम के लिए, वरना एक दलील बहुत स्ट्रांग दलील है कि हमारे ऊपर जादू होता है तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इंतहाई आजिज और अदना से उम्मती के पास जाते हैं, चाहे वो कोई हो बुजुर्ग, वली अल्लाह का कितने ही आला तरीन मकाम पर फाइज हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर वो जर्रा बराबर कोई हैसियत नहीं रखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आजिज और अदना उम्मती के पास तो जाते हैं कि आप ये पढ़ के फूंक दें कुछ ताकि जादू से जान छूट जाए, और जादू भाग जाता है। तो जहां उस उम्मती के पास ये कुव्वत है, तो जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उम्मती है, वहां कुव्वत का क्या हाल होगा? तो जादू के क्या मजाल है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से भी गुजर जाता। ये सिर्फ एक तालीम देने का जरिया था जो हुआ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो कोहे ओहद पूरे का पूरा सोने का हो जाए, लेकिन उम्मत की तालीम की खातिर एक आम आदमी की सी जिंदगी गुजारी है, जिसमें जंगे गजबात भी लड़ने पड़े हैं, जंगें भी कमांड करनी पड़ी हैं, तकलीफें भी उठाई हैं, बीमारी भी देखी है, वरना जो हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की महबूब हो उसके करीब इन चीजों का क्या गुजर है? आंख का एक इशारा दुनिया को बदल के रख दे, कुवत है वहां, ताकत है, लेकिन ये उम्मत को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन, पर्सनल एग्जाम्पल कह दीजिए एजुकेशन, इन तमाम सूरत हालात से गुजरे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये तालीम देने के लिए कि रब की मसलहतें सिर्फ रब जानता है और कोई दूसरा नहीं जानता, हत्ता के पैगंबर भी उसकी मसलहतों को नहीं समझेगा। ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए से वो तालीम दी गई जिसका आप हवाला दे रहे हैं। ख्वाब में मुर्शिद की ज्यारत करना और उठकर बस ये याद रहना कि मुर्शिद साहब आए थे, इसके अलावा सब कुछ या कुछ हिस्सा भूल जाना, क्या ये भुला दिया जाना मुरीद की नालायकी है? इसके अलावा ख्वाब में वालदैन जो जिंदा हैं वो अच्छी या बुरी हालत में देखना मगर जुज़ियात याद न रहना किस तरफ इशारा करता है? आगे मेरे लिए दुआ लिखी है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे मेरे लिए दुआ लिखने के लिए, अल्लाह इसका आपको अजर दे। बात यह है कि रूहानियत बड़ी अजीब व गरीब चीज है। पहली बात तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये वो राह है जिसमें अक्ल के जरिए रब तक नहीं पहुंचा जा सकता। रब तक पहुंचने के तीन जरिए हैं, अक्ल के जरिए है, दलील के जरिए या इल्म के जरिए, जो भी आप कहना चाहें उसे, क्योंकि इल्म के जरिए ही दलील आती है। अक्ल के जरिए, इल्म के जरिए और मोहब्बत के जरिए। तो अक्ल इंसानी महदूद है। जैसे दो संडे पहले मैंने एक जिक्र किया था कि तसव्वुफ में एक मकाम है, मकाम हैरत। उसको जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही खूबसूरत तरीके पर एक्सप्लेन किया है और उन्होंने उससे एक ऐसी बात निकाली जो बहुत खूबसूरत है और शायद दूसरी किताबों में वो चीज न मिले। आपने फरमाया कि जब इंसानी अक्ल मकाम हैरत पर चली जाए तो मकाम हैरत शुरू ही होता वहां से है जहां अक्ल इंसानी जवाब दे जाए, और जब अक्ल इंसानी जवाब दे जाए तो फिर इंसान की जुबान बंद हो जाती, गुंग हो जाता है। तो जो वली अल्लाह है, जब वो मकाम हैरत पर पहुंचता है तो वो खामोशी इख्तियार कर जाता है, चुप कर रोजा रख लेता है। जो मकाम हैरत पर पहुंचे और बोलता रहे वो वली अल्लाह नहीं है। ये दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब ने एक उसमें नुक्ता पैदा किया है। बात यह है कि हम लोग, बल्कि मैं तो अब उस कैटेगरी में नहीं आता, आप हैं, कि आप लोग जो मुर्शिद के सामने बैठे हैं हसूल इल्म के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मुर्शिद साहब के पास कोई सुरिंज है, इंजेक्शन लगाएंगे और वो इल्म आपके जिस्म में दाखिल कर देंगे। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपके सर पर सात मरतबा घुमाएंगे आपको इल्म ट्रांसफर हो जाएगा। वहां तो दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं मुर्शिद आमतौर पर करता है। एक वो गुफ्तगू करता है आपके साथ या आपकी मौजूदगी में दूसरों के साथ, तो वो इल्म ट्रांसफर कर रहा होता है, तरबियत कर रहा होता है मुरीद की। दूसरी बात यह है कि वो आपको पढ़ाई देता है कि ये आप पढ़िए और इसको इस तरह से वर्द कीजिए, वो आपको डिसिप्लिन कर रहा है। वो आपको किस्से कहानियां सुनाता है, वो किस्से कहानियां आपके एजुकेशन के लिए बयान किए जाते हैं। एक और तरीका इस्तेमाल होता है एक सिलसिले में, वो ये है कि जब मुरीद जिस पर मुर्शिद मेहनत कर रहा है इल्म ट्रांसफर करने के लिए, वो एक खास मकाम तक पहुंचता है तो वो देखेगा कि जब भी उसकी आंख खुलती है सोते से उठता है तो वो पढ़ रहा होता है कलाम इलाही, और वो ऐसा कलाम इलाही पढ़ रहा है जो वो आम हालात में नहीं पढ़ता। उस सिलसिले में ये खास बात है कि मुर्शिद ज्यादा मेहनत करता है, मुरीद कम करता। वो मुर्शिद पढ़वा रहा होता है सोते में, वो इल्म ट्रांसफर हो रहा होता है, वो एक तरीका है। इसी तरह ख्वाब में मुर्शिद आके तरबियत करता है। अब मुर्शिद तो कर रहा है, अगर शागिर्द कहीं मेरे जैसा है कि अंदर से उसके इतनी स्याही चढ़ी हुई है, या उसके अपनी वो फिक्स्ड नोशंस का आदमी है, ओपन नहीं है, कोई बात सीखना नहीं चाहता, हर बात में अकल को दखल देता है, अपने दिमाग इस्तेमाल करता है, कहीं लाशऊर में ये बात बैठी है कि मैं बड़ा काबिल हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ये क्या बेचता है बंदा मेरे सामने, ये लाशऊर में बातें चलती हैं। शौरी तौर पर आदमी कहता है नहीं मैं तो बड़ा आजिज हूं, इसीलिए मैं ये कहा करता हूं कि तकब्बुर की एक सबसे खौफनाक शक्ल भी है जिससे लोग वाकिफ नहीं, और वो है आजजी का तकब्बुर। तो जब इंसान के लाशऊर में, इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठी हूं कि मैं बहुत अकलमंद हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मेरा एक प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड मौजूद है, प्रूवन रिकॉर्ड है मेरा सक्सेस का, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं रहा हूं या हूं, ये उसके सबकॉन्शियस में कहीं होता है। नतीजा यह है कि वो मुर्शिद की बात को भी अकल पर परखता है, वो पिट जाता है। यहीं कहीं मैंने कभी किसी जमाने में एक किस्सा सुनाया था उन साहब का जिनको तसव्वुफ की राह पर जाने का बड़ा शौक था। लोगों ने बताया कि फलां बुजुर्ग हैं, वहां चले जाओ, बहुत अच्छे वली अल्लाह हैं। वो साहब चले गए, शागिर्दी इख्तियार कर ली, उन साहब ने भी कबूल कर लिया शागिर्दी में। 35 साल गुजर गए तो एक दिन नमाज के बाद मुर्शिद साहब ने ऐलान किया कि मैं फला दिन असर की नमाज के बाद अपनी तलवार इन साहब को सौंप दूंगा। बाहर निकले, सबने मुबारकबाद दी कि बड़ी तकदीर वाले हो, किस्मत वाले हो कि मुर्शिद साहब अपनी जाती तलवार आपको सौंप रहे हैं। बेचैनी से इंतजार था सबको। दिन आ गया, असर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर मैदान में लोग इकट्ठे हुए तो मुर्शिद साहब ने कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको तलवार दे दूंगा, तशरीफ लाइए आगे। तो वो साहब आगे गए तो मुर्शिद साहब ने कहा कि ये अपनी तलवार खोलकर जमीन पे डाल दो, तो मैं अपनी मेरी तलवार उसकी जगह मैं तुम्हें बांध दूंगा। तो उन मुरीद साहब ने तलवार खोली फौरी तौर पर, और उस हजूम में उनकी बेगम भी खड़ी थी, तलवार उनको दी कि ये संभाल लें। मुर्शिद साहब ने फौरन उनसे कहा कि तुम अभी इस लायक नहीं हुए कि तुम तलवार तुम्हें दी जा सके, अभी इंतजार करो, मेरे मर जाने के बाद स्पेन के फलां शहर में जाओगे तुम बीवी के साथ, वहां एक आदमी मिलेगा तो तुम उस वक्त इस काबिल हो जाओगे कि तुम तलवार को संभाल सको। उस कहानी का अगला हिस्सा और है, वो तफसील में क्या जाए उसमें। अब हुआ ये कि असल में अब इन साहब ने, मुर्शिद साहब ने तो ये हुक्म दिया कि तलवार खोल के जमीन पर डाल दो, इन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल की कि सोचा ये होगा कि हुक्म तो तलवार खोलने का है तो मैं तलवार खोल के बीवी को दे देता हूं कि वो संभाल ले, और मुर्शिद साहब अपनी तलवार मेरी कमर पर बांध देंगे। लेकिन मुर्शद तो मुर्शद है, उसको ये गवारा नहीं है। जो आदमी हुक्म की अधूरी पैरवी करेगा वो इस काबिल नहीं है कि उसको कुछ दिया जाए। तो ये जो ख्वाब में मुर्शद साहब नजर आते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन अभी मुर्शद अभी शागिर्द जो है वो उसको रिसीव करने के लायक नहीं है। नतीजा ये होगा कि मुर्शद साहब जो कुछ बताएंगे कि तुम ये पढ़ लिया करो, ये कर लिया करो, ये कर लिया करो, जब सो के उठेंगे तो मुरीद को वो चीज भूली हुई होगी, इसलिए कि उसका वक्त ही नहीं आया अभी। वालदैन को, जिंदा वालदैन को अच्छी या बुरी हालत में देखना, जैसे आपने फरमाया है, उसकी जुजियात भूल जाने की वजह यह है कि वालदैन खा कैसे क्यों ना हो, वो एहतराम के मकाम पर फाइज है, उनका एहतराम लाजिम है। तो अगर उस मुरीद का इल्म थोड़ा बहुत उसमें है, ख्वाब में उसने देख लिया, तो उनके एहतराम की वजह से रब ताला उस मुरीद के जहन से वो जुजियात निकाल देगा ताकि वालदैन के एहतराम में कोई फर्क ना आए। इसलिए अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि ये तो आप लोगों को, आपको सबको याद रहता है कि मैंने कोई ख्वाब देखा, लेकिन ये याद नहीं रहता कि ख्वाब क्या था। आपने ख्वाब में किसी बुजुर्ग को देखा और उन्होंने आपको क्लियरली बताया कि आप ये पढ़ लिया कीजिए, वो सब भूल गया कि उन्होंने क्या पढ़ने को बताया था, किस वक्त कितनी तादाद में पढ़ने को बताया था, वो जहन से निकल गया। उसका मतलब यह है कि अभी वक्त नहीं आया कि आप वो चीजें पढ़ सकें। तो इस ख्वाब का, इसकी तौजीह यह है ये सवाल किसी सामने किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नामे मुबारक लिखा है, लेकिन चूंकि मैं, मेरे मुर्शिद साहब ने ये सिखाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक लेना गुस्ताखी है, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम आप कहते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो, ये भी गुस्ताखी है। अदब का तकाजा यह है कि सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए, लेकिन वो मेरी शायद जुबान पर पुख्ता हो गया है, रवानी है इसमें, तो मैं जब भी जिक्र करूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहता हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जेब नहीं देता कि हम जुबान पर लाएं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया कीजिए, या नहीं कह पाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र मुबारक में क्या कभी अजान दी? अगर नहीं तो क्यों नहीं दी? मेरे इल्म में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान दी हो, और ये जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे इल्म में नहीं वो वकूई ना हुई हो। ये लेकिन दयानदारी का तकाजा ये है कि मैं ये कह दूं कि मेरे इल्म में नहीं कि अजान दी कभी। अब अजान न देने के पीछे हिकमत, आप औलिया किराम के डेरों पर जाते हैं, उनके आस्थानों पर जाते हैं, बहुत कम मौके ऐसे आएंगे आपकी जिंदगी में कि खुद वो वली अल्लाह जिनका वो आस्थाना है वो खुद इमामत कराए जमात की, बहुत कम मौका आएगा। करवा देते हैं कभी अगर जरूरत पड़ जाए, लेकिन बहुत कम। किसी और से वो कहेंगे कि इमामत आप कराएं। ये एक तरीकाकार है। एक वली अल्लाह मुझे जरूर मिले जो बड़ी पाबंदी से वो इमामत कराते थे, लेकिन वो कराते थे मस्जिद में इमामत, तो वो शायद उनकी ड्यूटी थी और उनकी मजबूरी थी कि इमामत करानी है, वरना अपने आस्थानों पर औलिया अकराम साहिब इल्म दरवेश लोग खुद इमामत कम कराते हैं, दूसरों से कह देते हैं कि आप, क्योंकि फकीर दूसरे को इज्जत देता है, उसका दुश्मन होगा उसको बाजू से पकड़ेगा, खुद जबरदस्ती जानवाज पर खड़ा करेगा, आप इमामत कराइए, वो इज्जत देगा, अपने घर आए हुए दुश्मन को भी इज्जत दे देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लाइट हाउस हैं पूरी कायनात के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह दूसरे को इज्जत देते रहे। मैं तो ये समझता हूं कि अजान की ड्यूटी चूंकि जनाब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तफवीज कर दी गई थी, तो एक बार जो चीज़ फकीर किसी को दे दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जिक्र ही छोड़िए, बहुत बुलंद है, फकीर भी किसी को कुछ दे दे तो फिर उसको छीनता नहीं है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जिम्मेदारी रही और वही अजान देते रहे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा नहीं फरमा गए, और हज़रत बिलाल हबशी भी इतनी मोहब्बत से अजान देते थे कि एक बार तशरीफ ले आए हबशा से वापस मदीना मुनव्वरा, तो लोगों ने इसरार किया सहाबा किराम ने कि अजान आप दें, तो अजान पूरी मुकम्मल नहीं कर पाए कि गिरिया इतना तारी हो गया, उन पर रिकत ऐसी तारी हुई कि अजान दे नहीं पाए। फिर इंशाअल्लाह ताला बाकी सवालात पे फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी। अस्सलामु अलैकुम।